तो चलिए हम हकूक को शुरू करते हैं। हकूक ऑफ राइट्स में सबसे पहला हक किसका लिखा हुआ है आपके पास? ये भी कोई हक होता? अगर आपके उस्तादों ने आपको इल्म ना दिया होता तो आज आप लिखने के भी काबिल नहीं थे, पढ़ना तो दूर की बात है। याद रखिए कि माँ बाप भी बाद में आते हैं। हर इंसान जो दुनिया में आया है उसके लिए सबसे बड़ा हक अल्लाह के बाद माँ बाप का हक है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। तो फ़र्क मैं समझा दूँ कि आप कहेंगे कि सबसे पहले तो हकूक में बात आनी थी माँ बाप की, लेकिन ऊपर शीट पे क्या लिखा हुआ है? अभी पिछली शीट चल रही है ना, ये मुआशरती हकूक है। आज की शीट अगर आप देखेंगे तो ख़ानदानी मामलात में माँ बाप है। बात समझ गए? हकूक व फ़राइज़ की बहस में माँ बाप की बात पहले आएगी, बट अगर मुआशरती और ख़ानदानी यानी फैमिली सिस्टम और सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनको अलग करेंगे तो हम बात चूँकि माशरे से शुरू करके ला रहे हैं इसलिए इल्म वालों की बात है और कोई तकाबुल ही नहीं है, दोनों ही लाजमी है। तो लिहाजा जब माशरे में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप जी रहे हैं, उस सोसाइटी में अगर आपका एक भी कोई रिश्तेदार ना हो, मिसाल है जैसे आप यहाँ अमेरिका में रह रहे हैं ना, हो सकता है आप में से कोई सिर्फ खुद ही एक कपल अपने ओन पे, आप हस्बैंड वाइफ ही हो, कोई दूसरा रिश्तेदार आपका नहीं यानी कोई सेकंड फैमिली नहीं भी है ना, तो भी इस सोसाइटी में कुछ हकूक हैं आपके ज़िम्मे। और किन के हकूक हैं? जिन्होंने आपको ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी इल्म दिया, क्योंकि इल्म बहुत बड़ी दौलत है। आप अपनी बचपन की वो टीचर सोचिए जिन्होंने आपको अलिफ़ बा ता सिखाया, ए बी सी डी सिखाई, 1 2 3 4 5 सिखाया, 2 + 2 सिखाया। आप ज़रा सोच के तो देखें कि उनको पता था कि आप कभी उन बोले हुए अल्फाज से कुरान का तर्जुमा लिखेंगे और याद करेंगे। तो अहले इल्म से मुराद सिर्फ दीनी इल्म नहीं है, दुनिया का इल्म भी है। मेरे तो दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं अपनी साइंस टीचर्स के लिए, क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक था मैथ की टीचर। जब कभी विरासत का टॉपिक पढ़ती पढ़ाती हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सवाल, तो मुझे आज भी अपने जहन में वो ही टीचर याद आती हैं जो हमारी मैथ टीचर थी, एक्सीलेंट टीचर थी। साइंस की कोई बात भी बात करती हूँ तो आज भी मुझे अपने स्कूल कॉलेज की वो साइंस टीचर याद आती हैं। अब उनको तो पता भी नहीं कि मैं आपकी साइंस की मिसाल को कुरान से इस वक्त जोड़ रही हूँ, या मैं अपनी कोई बात जो उन्होंने मैथ की सुनाई मैं उसको कुरान पे लेके आ रही हूँ। तो आपको नहीं पता कि ये बच्चा कल इमाम बुखारी बनेगा और आपको नहीं पता कि ये बच्चा क्या बनेगा। बिलीव मी, अगर आप में से किसी को भी टीचर बनने का मौका मिले इवन हेयर इन अमेरिकन स्कूल्स, इट्स अ ब्लेसिंग। क्यों? दो को लोग सुनते हैं, दो लोगों का हमारी ज़िंदगी में बड़ा गहरा असर होता है, एक टीचर और एक मीडिया। आज के दौर का सबसे बड़ा मला, मला क्या है? कालल मला उल्लज़ी नस्तकबरु, यानी जिनके रोब में हम आए होते हैं ना, वो ये दो ही हैं। आज उस्ताद ठीक कर दीजिए, नस्लों की नस्लें ठीक हो जाएंगी, और आज मीडिया का रुख दुरुस्त कर दीजिए तो आपके बच्चों को फिर आपको स्पेशली किसी संडे सैटरडे स्कूल में नहीं लेके जाना पड़ेगा। तो अहले इल्म के बहुत सारे हकूक होते हैं। जैसे पीछे हम आदाब कर रहे थे तो मैंने वहाँ इल्म के आदाब में कुछ चीज़ें स्किप भी कराई थी, लेकिन इसको भी अगर अलग करके सिर्फ इल्म वालों के हकूक देखिए तो पहली बात क्या होगी? ज़रा सा आप 3 4 सेकेंड सोचें खामोश रहकर कि क्या हकूक होंगे। चले, माँ बाप के तो हमारे जहनों में और बहुत सारे आते हैं जो इंशाल्लाह आगे पढ़े भी हुए हैं, कुछ थोड़ा बहुत तस्कर आज भी करेंगे। अहले इल्म का क्या हक है? पहला हक क्या होगा सबसे बड़ा? सोचें। देखिए, हक क्या चीज़ होती है? एक बंदा आपको सिखाना चाहता है तो आप उसको महरूम ना रखें। सबसे बड़ा हक उस्ताद का ये कि आप उससे इल्म लें। वो देना चाह रहे हैं, आप क्यों नहीं लेना चाहते? वो बुलाते हैं, आप क्यों नहीं आते? वो बताते हैं, आप क्यों नहीं याद रखते? क्यों नहीं देते? उसकी वजह क्या है कि हमारे दिल में ये नहीं। तो सबसे बड़ी चीज़ फिर शुक्रगुजारी है। आप इस चीज़ का शुक्र अदा करें कि कोई है जो आपको इल्म दे रहा है, और इल्म दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आपको पता है इल्म वालों के आगे बड़े बड़े दौलतमंद जूतियाँ सीधी करते हैं, ये तो एक अलग बाब है, अब इसको इस वक्त तो छेड़ें भी ना तो सही रहेगा। बड़े बड़े खलीफा अपने दौर के आइमे कराम के जूते सीधे करते थे, वो उस्ताद भी ऐसे थे ना फिर, और उस दौर में इल्म की कदर भी बहुत थी। खलीफा के बेटे अपने अपने दौर के जो आइमे कराम थे और जो सातज़ाए कराम थे उनके दरवाज़ों पे ऐसे बैठे होते थे जैसे कोई चौकीदार बैठा होता है। जिस चीज़ की भी कदर होगी ना, लोग उसकी तरफ चल रहे होंगे। तो याद रखिएगा, जिस चीज़ का माशरे में गलबा होता है ना, लोग उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। इट्स ट्रू। आजकल कैरियर, एजुकेशन, मनी, फिर इसी तरह से आप देखिए स्टेटस, ये चंद लफ्ज़ हमारे दिमागों पे छाए हुए हैं ना। ये सारे नाम जो हैं, जब इल्म की धाक होती है ना, तो लोगों के दिलों पर इल्म के नाम पे बैठे होते हैं। तो लिहाजा अहले इल्म के हकूक जो हैं, उसमें ये हक है। पहले तो आप थोड़ा सा इसको भी समझिए कि इस्लाम ने हर हक वाले को उसका हक दिया। ये जब हम शुरू से पढ़े हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद, देख लीजिए, अल्लाह हक देता है। इंसान की ज़िंदगी इस तरह की डोरियों में बंधी हुई है कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले में दूसरों से फ़ायदा ले रहे होते हैं। सूरत बकरा 29 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक लकुम मा फिल अर्दी जमीया, उसने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया जो कुछ ज़मीन में है। तो अहले इल्म के बारे में आयत नोट कर लीजिए, सूरत ज़ुमर 9, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। कह दीजिए कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं? लेकिन नसीहत तो अक्लमंद लोग ही कबूल करते हैं। तो इल्म एक रोशनी है, जहालत अंधेरा है। जब रोशनी आती है ना, तो अंधेरा चला जाता है। अल्लाह ताला ने इंसानियत को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया है। इल्म की बुनियाद पे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करवाया फरिश्तों से, और इंसानियत के नाम आखिरी पैगाम जो कुरान की सूरत में नाजिल होना शुरू हुआ, तो पहला लफ्ज़ क्या था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। और इल्म से दर्जात की बुलंदी मिलती है। सूरत मुजादिला आयत 11, यरफा इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह तुम में से उन लोगों के दर्जे बुलंद करेगा, कौन से, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म, वो लोग जो इल्म दिए गए दर्जात दर्जों में, वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह हर उस चीज़ से जो तुम अमल करते हो खूब आगाह है। तो क्या पता चला कि इल्म बंदे को शान देता है, इज्जत देता है। क्या करें, नंबर एक उनसे नरम लहजे में बात करें, सूरह लुकमान 19 इसकी दलील है। दूसरी बात, इनके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आइए। जैद बिन साबित कातिबे वही थे, एक दफ़ा किसी जनाजे में शामिल हुए। नमाज के बाद जब सवारी पर सवार होने लगे, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इनकी रिकाब थाम ली, यानी सवारी की रिकाब। हज़रत जैद ने कहा, ए रसूले खुदा के चचा जात, भाई रिकाब छोड़ दीजिए, यानी उनको ऑनर दिलाई कि आप तो नबी के चचा जात भाई हैं, तो आप मेरे घोड़े की या मेरे जानवर की रिकाब थामे हुए। तो हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा, हमें हुक्म दिया गया है कि आलिमों और बड़ों की ताज़ीम करें। और इस तरह कहते हैं कि जैद ने हज़रत इब्ने अब्बास का हाथ चूमा और फरमाया, हमें हुक्म दिया गया कि रसूले खुदा के रिश्तेदारों का एहतराम करें। ये तबरानी और हाकिम की रिवायत है, यानी वो उनकी इज्जत करें, वो इनकी करें। ये है असल में आइडियल सोसाइटी। बहरहाल, तीसरा हक क्या है कि अहले इल्म की सोहबत इख्तियार की जाए, हिर्स रखनी चाहिए। अबू हुरैरा कहते हैं कि लोग कहते हैं, अब ज़रा अबू हुरैरा का बात करने का अंदाज़ देखिए, कि अबू हुरैरा कहते हैं कि लोग कहते हैं। क्या कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करते हैं, क्योंकि ये पूरा वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, असहाबे सुफा में थे। कमाने के लिए नहीं निकलते थे, क्यों, कि कहीं पीछे से अल्लाह के नबी कुछ कहें और मैं सुनने से महरूम रह जाऊं। कहते हैं लोग तो ये कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करता है, असल बात ये है कि हमारे मुहाजरीन भाई तो बाजारों की खरीदो फरोख्त में लगे रहते थे, मुराद कारोबार है, और अंसारी भाई तो अपनी जायदादों में मशगूल रहे। और अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जी भर कर रहता और उन मजलिसों में हाजिर रहता जिनमें दूसरे हाजिर ना होते, और वो बातें महफूज रखता जो दूसरे महफूज नहीं रख सकते थे। ये बुखारी की रिवायत है 118 जी। तो अबू हुरैरा ने अगर टाइम लगाया, वक्त लगाया, तो उनका फल भी है ना। सबसे ज़्यादा हदीसें किससे मरवी हैं, अबू हुरैरा से। और कौन थे, कबीला दोस्त के। किसी को पता कि कब मुसलमान हुए थे, कब आए थे अल्लाह के नबी को पहली दफ़ा मिलने, खैबर की जंग के बाद नबी के पास आए थे। ये वो सहाबी हैं कि कबीला दोस्त से थे, इस्लाम आ चुका था, नबी के सहाबी बनने का मौका खैबर, और खैबर के बाद आप कितने साल जिंदा रहे हैं जाके गिन लीजिए। थोड़े से अरसे में इन्होंने इतनी हदीसें क्यों ली? डिवोशन, फोकस्ड। और इल्म की शान है डिवोशन और फोकस्ड होना। पार्ट टाइम इज़ पार्ट टाइम, फुल टाइम इज़ फुल टाइम। फुल टाइम तालिब इल्म, फुल टाइम अंसारुल्ला होता है। पार्ट टाइम तालिब इल्म, पार्ट टाइम अंसारुल्ला होता है। फुल टाइम ही असल में ओनर होता है। पार्ट टाइम वक्त पे, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मुमकिन हो ना तो अपनी बाकी ज़िंदगी को फुल टाइम इस काम पे करके देखें, फिर आप खुद बताएंगे कि लोग जिन चीज़ों को लेने के लिए वक्त लगाते हैं और वक्त की कमी का रोना रोते हैं, वो चीज़ें आपके हाथ में होंगी, लेकिन आपको मिल सब कुछ जाएगा। फिर इसी तरह अहले इल्म से मुलाकात और इनसे इल्म के हसूल के लिए सफ़र करना चाहिए। राहिला कहते हैं इसको। अरब हिस्ट्री को खोल के देखिए, मुसलमानों की शान थी इल्म लेने के लिए सफ़र करते थे। इमाम बुखारी ने तो इस पे बहुत कुछ लिखा है, उनकी किताब में एक बाब है, बाब खुरूज फी तलब इल्म, इल्म की तलब में निकलना। फिर इसी तरह जाबिर बिन अब्दुल्ला का नाम आप में से हर एक ने सुना होगा। सिर्फ एक हदीस की खातिर अब्दुल्ला बिन उनैस के पास जाने के लिए 1 महीने की मुसाफत तय की। बुखारी की रिवायत 78 जाके पढ़िए। और जब अब्दुल्ला बिन उनैस के दरवाजे पे पहुंचे, मुल्क शाम जाना आसान काम नहीं था, तो उनका दरवाज़ा नहीं नॉक कर रहे। क्यों? सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, कोई काम कर रहे होंगे। जब खुद ही घर से निकले वो अपने किसी काम पे, तो दरवाजे पे मिले, अरे जाबिर तुम कहाँ से? जानते थे एक दूसरे को, वो भी मदीना से, ये भी। कहा कैसे अंदर हो, अंदर हो, क्या हाल है, कैसे हो भाई, तुम क्यों? वो मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे पता चला है कि वो फलां। अच्छा, हदीस भी पता थी। मन सलका तरीक़ा लियतलुबु फीही इल्मन, कि जो निकले किसी रास्ते में इसलिए कि उसमें इल्म हासिल करे, सखलल्लाहु लहू तरीक़ल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो भी पता थी तो इनसे क्यों पूछने आए? ताकि कल जब हदीस में लफ्ज़ आए अन जाबिर इब्न अब्दुल्ला, यानी जाबिर का नाम अब्दुल्ला बिन उनैस के बाद आ जाए। जैसे मिसाल देती हूँ कि अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अब्दुल्ला बिन अनीस अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु, आपको मुझे ये बातें अभी नहीं समझ आएंगी, बिलीव मी। हम कहते हैं घर बैठ के ले लेंगे, किसी से नोट्स ले लेंगे, नोट्स लेके ही सारा पढ़ पढ़ा लेंगे। इल्म ऐसे नहीं आता, जिस्म की राहत के साथ इल्म नहीं आता। इल्म के लिए घुलना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, और इसमें बहुत कुछ है। लेकिन मैं इसको इधर इसलिए छोड़ती हूँ कि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा। शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं आपको अपने लिए किसी बात के लिए तैयार कर रही हूँ, लेकिन हर इल्म वाला इस बात का हकदार है कि आप उसकी कदर कीजिए। अपनी छोटी छोटी ज़ुबानों से बड़ी बड़ी बातें ना निकालें, उलमा के ख़िलाफ़, मुफ्तियों के और शयूख के ख़िलाफ़। हम आप तालिब इल्म हैं, बस इतना काफ़ी है। हक़ बात लीजिए, अहले इल्म के हकूक़ में एक हक है, लिखिए आप उसका, कि चेक कीजिए अगर आप दीन का इल्म ले रहे हैं ना, तो कुरान और सुन्नत की ज़र्ब कड़ी हो। सिर्फ बोलने के अंदाज़ और बातें बड़ी अच्छी करने को मेयार बनाकर अपना अकीदा ख़राब ना करें। अहले इल्म का हक़ है कि आप उनके भी अकायद में अगर कोई कमी बेशी देखते हैं तो उसकी भी फ़िक्र कीजिए और उसको भी आगे लेकर चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये नहीं होगा, तब तक दुनिया में वही होगा जो इस वक्त हो रहा है। फुला बोलता बड़ा अच्छा है, तो बोलने वाले तो आपने कभी चर्चों में तो जाके सुने वो कैसा बोलते हैं, ऐसे दिल मोह लेते हैं। और नाम नहीं लेती, अपने ही मुसलमानों में कई ऐसे गिरोह हैं कि जब वो उनके आलिम और उनके स्पीकर्स बात करते हैं, बंदा गुम हो जाता है, तो अच्छे लफ्ज़ों पर मत आए। फुलां को कुरान बड़ा याद है, आपको समझ ही नहीं आएगा वो कुरान की आयत कहाँ क्या कोट करता है। एक मेयार याद रखिए, काल अल्लाह व काल रसूल, बुलाता किससे है, जोड़ता किससे है, उसकी बात सुन के उससे जुड़ते हैं तो शख्सियत परस्ती होगी, और उसकी बात सुन के अल्लाह से जुड़ते हैं, दीन से जुड़ते हैं, अपनी खराबियां नजर आती हैं, अपने गुनाह समझ आते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि वो अल्लाह से जोड़ता है। ठीक है, मोहब्बत होती है। आप देखिए ना कि पानी लेंगे तो ग्लास तो हाथ में आता ही है। उस्ताद इज़ द कैरियर, इल्म का होल्डर है, उसके लिए दिल में शुक्रगुजारी रख सकते हैं आप। अदब रख सकते हैं, लेकिन असल चीज़ वो इल्म है। आप उस्ताद के गुण गाते रहे सारा दिन, फूल भेजते रहे, तोहफे भेजते रहे उसको अपनी तरफ से जो मर्जी, लेकिन बात नहीं मानेंगे तो गलत है। तो सबसे बड़ा अहले इल्म का हक क्या है कि अगर वो आपको हक बात कह दे तो फिर माने। फिर किसका इंतजार है, किसका फतवा मांग रहे हैं आप अभी कि शायद कोई और शहर में आए फतवा दे दे कि नहीं नहीं इट्स ओके। नहीं नहीं आज के दौर में नहीं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम पूरा कुरान पढ़ के भी कई चीज़ें नहीं मानते, पता नहीं हमें किस चीज़ का इंतज़ार होता है। नहीं, उस्ताद का या अहले इल्म का सबसे बड़ा हक ही है कि जो खैर की बात कहे उसको माने। कुरान में दलील मौजूद है कि मेरा बदला, या अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो ना, वो तुम हो। समझ गए? तुम कैसे? कि जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर लो तो सदका जारिया बन जाओगे। फिर बाकियों को तो आप कुछ और देंगे ना, उस्ताद को अपना आप देना पड़ता है। अहले इल्म का बेस्ट तोहफा अगर आप उसको कुछ देना तो वो कह के आई एम अवेलेबल, मैं हूँ आपके पास। देखिए खाने तो सारे खिला लेते हैं, कौन नहीं खाना पकाता अच्छा, लेकिन एक शागिर्द पढ़ने के बाद सिर्फ खाना ही खिलाता रहे तो क्या उस्ताद उससे खुश होगा? तोहफे तो सारे ही दे ले लेते हैं। अगर एक इल्म, जिसको इल्म का तोहफा आपने दिया, वो आपको फिर दुनिया की चीज़ें लाकर दे दे तो ये क्या कमाल हुआ? उस्ताद को सबसे ज़्यादा खुशी अपने तालिब इल्मों को इल्म में बढ़ता देख कर होती है कि मैंने सही ज़मीन पे हल बोया, बीज डाला, जो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है ना, तो ये वाकई उस काबिल थे कि ये उसमें से निकले। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें महरूम ना करे। आगे चलते हैं, अहले इल्म की और बहुत सारी बातें, इसको मसलतन रोक लिया है। इंशाल्लाह अगले कोर्स में तो बहुत सारी बातें हमने करनी भी है इस पे। आगे चलते हैं हमसायों के हकूक, सोशल लाइफ में जो हमारा फिर सबसे पहला हक बनता है वो हमसायों पे बनता है, नेबर्स राइट। जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमेशा हमसायों के मुतालिक वसीयत करते थे। मुस्लिम की रिवायत आपने भी शुरू से सुनी होगी 6685, कि जिब्राइल आए और मुझे हमसायों के हकूक बताने लगे, यहाँ तक कि मैंने ख्याल किया कि अनकरीब वो इसे वारिस भी बना देंगे, यानी आप अब ये कहेंगे कि विरासत में भी हिस्सा दो। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हमसायों के बारे में कुरान की एक आयत है, नंबर नोट कीजिए, उसमें तीन मुख्तलिफ किस्म के हमसायों का जिक्र है। सूरत निसा 36, हमसाय को क्या कहते हैं अरबी में? जार, जवेरिया, जौर, पना देने वाला, वही लफ्ज़ है। मुजावर बनने का लफ्ज़ भी सुना होगा। तो अल्लाह ताला ने इसमें पीछे से वा अब्दुल्ला से बात शुरू करके क्या फरमाया, वल जार इज़िल क़ुरबा वल जार इल जुनुब व साहिब बिल जंबी व इब्न सबील। तो हमसाए कभी कभी मुसलमान होते हैं, कभी गैर मुस्लिम होते हैं, ये दो डबल हक हो गया। अगर मुस्लिम और फिर हमसाया भी है तो दो हक हो जाएंगे, और अगर हमसाया भी है, मुस्लिम भी और रिश्तेदार भी है तो तीन हक हो जाएंगे। तो लिहाजा रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा मामला होना चाहिए। क्या कीजिए, नोट कर लीजिए हकूक में। पहली बात है कि हमसाए के लिए वही पसंद करें जो अपने लिए करते हैं। मुस्लिम की रिवायत 170, आपने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन हो नहीं सकता जब तक अपने हमसाए और अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए करता है। फिर दूसरा हक क्या है कि हमसाए की खबर रखिए। अगर वो भूखा है, गरीब है, उसके घर में खाना नहीं है, तो आपका अपना खाना दुरुस्त नहीं होगा। अल अदबुल मुफरद 112 में बात है कि जो शख्स खुद पेट भर कर खा ले और उसका हमसाया भूखा रहे तो वो मोमिन नहीं हो सकता। तीसरा हक हमसाए का क्या है कि उसको तकलीफ़ देने से गुरेज कीजिए। आपने कसम खाई अल्लाह जुलजलाल की, वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं, तीन दफ़ा। कौन? फरमाया, जिसका पड़ोसी उसके शर और आफतों से महफूज ना हो। बुखारी 6016। फिर अगली बात, हमसाए को तकलीफ़ पहुंचाने वाला जहन्नमी और तकलीफ़ ना देने वाला जन्नती है। हदीस जाके पढ़िएगा, मुस्नद अहमद जिल्द 2 440 और बुखारी 6018। फिर अगली चीज़ है कि हमसाए की इज्जत नफ्स और इसके घर के तकद्दस का एहतराम करना चाहिए। आपने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को कोई शय देने में हिकारत महसूस न करे, चाहे बकरी का खुर ही क्यों ना हो। बुखारी 6017। यानी अगर हमसाया कोई छोटी सी हल्की सी चीज़ भी बनाकर दे दे तो खुशी से ले लीजिए। फिर आपने फरमाया, ये भी मुसनद अहमद की रिवायत है 168 पार्ट 2 है, कि अल्लाह के नज़दीक पड़ोसियों में सबसे बेहतर वो शख्स है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर हो। फिर मिशकात 4990, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हासिल करने वाले को चाहिए कि पड़ोसी से हुस्ने सलूक करे। फिर अगला हक है हमसाए का, कि अपने खाने में हमसाए का हिस्सा शामिल कर ले। आपने फरमाया, जब तुम शोरबा पकाओ तो इसमें पानी ज़रा ज़्यादा डाल लो और अपने हमसाए का ख्याल रखो, यानी ज़्यादा कर लो, मुराद के अगर थोड़ा है तो ज़रा ज़्यादा करके उसको भी दे दो। ये मुस्लिम 668 है। फिर इसी तरह पड़ोसियों को तोहफे भी देने चाहिए। हज़रत आयशा से रिवायत, अल्लाह के नबी से पूछा, मेरे दो पड़ोसी हैं, किसको तोहफा भेजूँ? तो आपने फरमाया कि जिसका दरवाज़ा तुम्हारे करीब हो उसको दिया करो। तो क्या पता चला कि हमसायों के बहुत सारे हकूक़ हैं। फिर इसी तरह आप देखिए, वो छोटी छोटी बातें जो हम बड़े ऑब्वियसली जानते हैं, कि आवाज़ें ऐसी नहीं आनी चाहिए कि हमसाए तंग हों, बेवक्त उनको जाकर तंग नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह अपने घर का कचरा उनके सामने ना डाल दीजिए। फिर इसी तरह से हमसायों के हकूक में ये भी है कि अगर उनको आपके फिज़िकल हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प कर दीजिए। और वो वाक़या भी आपने सुना होगा कि एक शख्स नबी सल्लम के पास आया, कहा कि मेरा हमसाया मुझे तंग करता है। खैर, आपने उसको समझाया बुझाया, लेकिन जब मामला एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ तो आपने कहा कि तुम एक काम करो, घर का सामान बाहर निकाल के रख लो, और जो आता जाता हो पूछे क्या हुआ तो कहना, भाई जा रहा हूँ, ज़रा हमसाया तंग करता है। अच्छा, यही किया। अब उनका सामान ही थोड़ा सा था, हम होते बाहर निकालते तो रास्ता ही ब्लॉक होता, पुलिस आ जाती है। नहीं, सामान रख के बाहर बैठ गया। वे कह रहे, भाई क्या हाल है, कैसे, मेरी सामान क्यों बाहर है? अरे बस घर छोड़ के जा रहा हूँ। भाई क्यों, खैरियत? बस जरा हमसाया, एक आध जुमला बोला, यानी ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिसुई इल्ला मन जुलिम, में वो हमसाया भी आता है जिसको दूसरा तंग करे। दो तीन लोगों के मुंह से ये बात जब सुनी, हमसाए तक बात पहुंच गई। लोगों ने कहा, तू कितना बदबخت है, तेरी वजह से वो घर छोड़ रहा है। थोड़ी देर में वो आया, सामान उठाकर इसका अंदर लिया, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मामला ख़त्म हो गया। तो कभी कभी इस तरह के हालात भी आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला बस ऐसे बुरे वक्त से बचाए। हम कैसे हमसाए हैं, ये अपने आप से पूछिए, बिला रोक टोक चले जाना। और हमसाए में याद रखिए कि ज़रूरी नहीं दूसरा घर, कभी कभी दूसरा कमरा भी होता है। यूरोप में आप चले जाएं तो एक घर के अंदर दो दो तीन तीन फैमिलियाँ रहती हैं, हर बेडरूम एक घर होता है वहाँ। अब आप उसके कमरे में घुस रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, एक साथ रहने के भी आदाब में ये चीज़ मौजूद है कि कभी किसी की प्राइवेसी में खलल नहीं डालना चाहिए, तजस्सुस नहीं रखना चाहिए, और इसी तरह की नेगेटिविटी जो मैं गुमान करती हूँ कि आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह पता है, उस सब का ख्याल रखिए। अब आपके जहन में एक सवाल जो मैं इसी पे कर दूँ, वेस्ट में रहने वालों के लिए वो नोट कर लें हमसायों पे, कि नॉन मुस्लिम हमसाए का क्या हक है, इसको इस्लाम दीजिए। कितना खुशकिस्मत हो वो शख्स कि क़यामत के दिन उसके हमसाए के कि चूँकि मैं इसके हमसाए में था तो मुझे इसको देखकर इस्लाम मिल गया। ये हक है कि उनको दीजिए। और ये भी हक है कि अगर मुसलमान है और अगर आप नमाज के लिए जा रहे हैं तो आप उनको भी दावत दे सकते हैं। देखिए, साथ रहने वाले तो सबसे ज़्यादा एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं ना, तो नेकियों में तआवुन कीजिए एक दूसरे पे। यतीमों के हकूक, नंबर एक, यतीम के साथ एहसान करना चाहिए, सूरत निसा 36। फिर यतीमों की इसलाह करना चाहिए, क्योंकि बाप नहीं रहा ना, तो अब आप उनकी इसलाह कीजिए और उनकी आदत इतवार पे नज़र रखिए, सूरह बकरा 220। फिर तीसरा हक यतीमों का क्या है, कि उनके साथ अच्छी बात करो, नरम बात करो, सूरह बकरा 83। क्योंकि अमूमन लोग यतीमों को धुतकारते हैं क्योंकि माँ बाप तो होते नहीं। फिर चौथा हक क्या है, कि यतीम पर सख्ती ना करें, सूरह दोहा 9:10। फामल यतीम फला तखर वामसाइला फला तनहर। फिर पांचवा हक है कि यतीमों पे माल खर्च कीजिए, क्योंकि जब माँ या बाप दोनों नहीं रहते, या ख़ास तौर पे बाप नहीं रहता, तो उस वक़्त फिर दूसरे बहन भाई रिश्तेदार भी बस मौके मौके पे देंगे, हर वक़्त नहीं देते। दलील सूरह बकरा 215, फरमाया वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील। फिर इस तरह छठा हक है कि यतीमों का अगर कुछ माल है तो उसको अपने माल के साथ मिला कर ना खा जाइए, इस रंग में कि जी उनकी परवरिश पे सारा लग गया, सूरत निसा आयत 2। वातुल यताम अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। फिर सातवां हक है कि यतीम जब बालिग होने लगें तो उनका माल उनको वापस करें, लेकिन गवाह मुकर्रर कर लें, कोई चचा मामू फूफा जो भी उसको गवाही दे दे कि हाँ आपने उसका माल उसको दे दिया। सूरत निसा 6 में इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। फिर आठवां कह के यतीम का माल बातिल तरीके से खाने वालों का अंजाम जहन्नुम में दाखिला, यानी ऐसे लोग जो बहाने बहाने से यतीमों का माल खा जाते हैं। सूरत निसा आयत 10, इन्नल्लज़ीना याकुलून अमवाल अल्यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा वसयसलऊना सईरा। आज हमारे माशरे में यतीमों का माल नाहक खाने की कोई मिसाल।
वालिद साहब के बाद तो मेरी सारी जायदाद हमारे पाया में रख दिया।
जायदाद उनकी कोई और ले ले, यानी जायदाद में हिस्सा ना दिया, या सांझी जायदाद थी तो जो बेकार किस्म के टुकड़े थे वो रख लिए दे
मेरे
दिए।
भाई जी उनको ट्रस्टी
और
बनाया हुआ था।
एक और चीज़ जो है वो क्या है, बहुत ही दर्द मंदी के साथ ये बात है कि आज हम रस्मों रिवाज के नाम पे भी यतीमों का माल नाहक खाते हैं। एक औरत ने ये बात शेयर की थी, अपनी शौहर फौत हो गए, बच्चे छोटे थे, एक छोटा सा प्लॉट टुकड़ा ज़मीन का छोड़ गए, तो गुमान था कि चलो यही कल किसी तरह से कोई माश का ज़रिया बनेगा, लेकिन रिश्तेदारों ने और फिर किसी दीनदार से पूछने पे कि अगर तुम अपने शौहर का 40वां करके खाना नहीं खिलाओगी लोगों को तो उसकी रूह भटकती रहेगी, और दिस एंड दैट, और वो कहती है कि मैंने वो फिर प्लॉट बेचा, और वो प्लॉट बेचकर जो पैसे आए उससे अपने शौहर की ये आखिरी रसूमात की और उससे मैंने अपने रिश्तेदारों को खिलाया। सच बताइए, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि आप खिलाएं, जब कोई फौत होता है ना तो आपको तो उसके घर से खाना नहीं खाना चाहिए। जब जाफर तैयार का इंतकाल हुआ तो आपने कहा खाना बना के ले जाओ, हरीसा बना कर ले जाते थे, दिल को ताकत मिलती है, हम बैठ के 10-10 दिन खाने खाते हैं। शहर में रहने वालों को तो खाना ही नहीं चाहिए। तो ये जो आज हमारी मौत की रसूमात है ना, तीजे की और कुलों की और 10 दिन जुमेरातों की जुमेरातें, यानी जब तक सारा ख़त्म ना हो जाए हमने छोड़ना नहीं है आपको, ये जुल्म है, ये माल खाने के बराबर है। फिर यतीम की किफालत पे जन्नत में खुशखबरी है, बुखारी 5304, आपने फरमाया कि मैं और यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में यूं होंगे, ये दो उंगलियां, ये देखिए ये शहादत की उंगली है ना, और ये दो उंगलियां। अब ये दो कैसे हैं, जरा आप हाथ को देखिए। मुहद्दसीन इस हदीस पे बात करते हैं कि कैसे, तो कुछ कहते हैं कि ये दो इसलिए कि इन दोनों के बीच में कोई तीसरी उंगली नहीं है, एक के बाद दूसरी, यानी सात होंगे, और कुछ ये कहते हैं कि वो शख्स ये होगा और नबी सल्लम इधर होंगे, यानी नबी के मुकाम और यतीम के किफालत करने वाले के बीच में बहुत थोड़ा फ़र्क होगा। तो हमेशा इन चीज़ों पे दर्द रखिए, और हमारे यहाँ तो बहुत ही जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला बचा के रखे। कोई बात नहीं, देखिए अभी सुन के आए हैं, मुसीबतों गमों पे शुक्र कीजिए कि ये दुनिया की मुसीबत है, आखरत की नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ उनको भी उससे फ़ायदा ही होगा, जब कयामत के दिन तकलीफ़ों और मुसीबतों पे रिवॉर्ड्स मिलेंगे तो बंदा कहेगा अल्लाह और मिलती, और दुख मिलते, और बीमारियां मिलती, कैंचियों के साथ हमारे जिस्म को काटा जाता, क्योंकि आज अजर मिल रहा, बीमारों को जब अजर मिलेंगे तो ये होगा। तो हदीस का एक खुलासा है कि कदरुल बलाई, मुसीबतों और बलाओं की कदर तो उस दिन आएगी जब गैब का पर्दा हट जाएगा। तो आपको मुझे क्या पता कि इस घड़ी या इस फोन के अंदर क्या मशीनरी काम कर रही है, तो हमेशा खुश रहें। जी, हर चीज़ लिमिट्स के साथ, हर चीज़ लिमिट्स के साथ है। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने का हर तरीका सिखाया है। आप देखें ना, यतीम महरम नहीं तो ज़रा वो बालिग होगा ना, तो बालिग तो यतीम नहीं रहता, बलूगत तो ख़त्म हो जाती है यतीमी से। तो आज हमारे इस स्ट्रक्चर को भी रिवाइज़ करने की ज़रूरत है बहुत जगह पे। ठीक है।